नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति पर अपनी साझा चिंताओं और संवाद तथा कूटनीति से समाधान की आवश्यकता पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए घनिष्ठ सहयोग और समन्वय जारी रखेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची से बातचीत की। उन्होंने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र बिन हमद बिन हमद अल बुसैदी से भी चर्चा की। कई देशों के शामिल होने के साथ पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष तेज हो गया है। अमरीका और इसराइल ईरान पर हवाई हमले कर रहे हैं और तेहरान मिसाइलों और ड्रोन से जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हिजबुल्ला भी ईरान के साथ हमलों में शामिल हो गया है। क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा के लिए इसे खतरा बताते हुए कई देश चिंता व्यक्त करने के साथ स्थिति को शांत करने का आह्वान कर रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कतर में 4 अतिरिक्त लड़ाकू विमानों की तैनाती की घोषणा की है। ये विमान कतर में पहले से तैनात ब्रिटिश बलों में शामिल होंगे। इस बीच रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा है कि रूस अमेरिका और इसराइल के ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य अभियान को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में रायसेना डायलॉग के 11वें संस्करण का शुभारंभ किया। मुख्य भाषण देते हुए फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्सेंडर स्टूब ने कहा कि विकासशील और अल्प विकसित देश ये तय करेंगे कि भविष्य में विश्व व्यवस्था कैसी होगी और इसमें भारत की अहम भूमिका होगी।
India as a major power,
भारत एक प्रमुख शक्ति के रूप में ये तय करने में एक महत्वपूर्ण या शायद सर्वोपरि भूमिका निभाएगा कि क्या दुनिया सौदों, लेन देन और हितों के क्षेत्रों में संघर्षपूर्ण बहुव्यवस्था की ओर जाएगी या दुनिया अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, नियमों, मापदंडों पर आधारित एक नई सहकारी, निष्पक्ष और प्रतिनिधि बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था की ओर जाएगी।
बेस्ड ऑन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, रूल्स एंड नॉर्म्स,
उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सीट मिलनी चाहिए। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि आगामी कुछ दिनों में होने वाली चर्चाएं नई क्षमताओं, प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई सोच पर केंद्रित होंगी।
अगले कुछ दिन में हमारी चर्चा नई क्षमताओं, सैन्य, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, मानव संसाधन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा प्रौद्योगिकी के बारे में होगी। ये चर्चा दो नए विचारों, जोखिम लेने की बढ़ती प्रवृत्ति और साथ ही जोखिम कम करने तथा विविधीकरण के बढ़ते संकल्प के बारे में भी होगी।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। श्री बोस नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने थे। श्री बोस ने अपने इस्तीफे की पुष्टि करते हुए कहा कि वे 3.5 साल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्हें बताया कि आरएन रवि को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है। देश में 10 राज्यों में 37 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन था। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। उम्मीदवार 9 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं। इन सीटों के लिए मतदान 16 मार्च को होगा और परिणाम उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे। नेपाल में आज हुए चुनाव में 60% मतदान हुआ। दोलखा, सरलाही और रौतहट में छिटपुट झड़पों के साथ कुल मिलाकर चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मतदाताओं ने नेपाल में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पूरे उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। भारत T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हराया। भारत ने इंग्लैंड को 254 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में इंग्लैंड की टीम 246 रन ही बना सकी। फाइनल मुकाबला 8 मार्च को अहमदाबाद में न्यूजीलैंड और भारत के बीच शाम 7 बजे से खेला जाएगा। पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया था। मौसम विभाग ने बताया कि कोंकण और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम बना रहेगा। इस सप्ताह उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।